ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की केवल ज्ञान के 10 अतिशय अतिशय का अर्थ होता है जो विशेष है, दूसरी जगह पाया न जाए और यहाँ पाया जाए, उसका नाम अतिशय है। केवल ज्ञान संबंधित भी 10 अतिशय हैं। ये अतिशय छद्मस्त जीवों में पाए नहीं जाते। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात उनके ज्ञान में ही ये विशेषता होती है कि ये 10 अतिशय पाए जाते हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात निम्न 10 अतिशय होते हैं। पहला, चारों दिशाओं में 100-100 योजन तक सुविक्षता हो जाती है, अर्थात अकाल आदि नहीं पड़ते हैं। 100 योजन की परिधि में जहां समोशरण उपस्थित रहता है उसके आसपास में चारों दिशा में 100-100 योजन तक की परिधि में अकाल नहीं पड़ता। अच्छा है, भव्य जीवों का कल्याण होने के लिए यह भी एक साधन है। केवल ज्ञानी का आगमन हो गया तो निश्चित रूप से भव्य जीव आनंदित रहते हैं, भौतिकता की दृष्टिकोण से भी आनंदित रहते हैं और परमार्थ की दृष्टिकोण से भी आनंदित रहते हैं। भौतिकता की दृष्टि से इसलिए कि वो आ गए तो हमारे यहाँ अकाल पड़ने वाला नहीं है, निश्चित है, पानी बरसेगा, फसल आएगी। सभी किसानों को ये विश्वास हो जाता है कि केवल ज्ञानी आ रहे हैं, महावीर भगवान आ रहे हैं तो फिर तो ठीक ही है, हमको कोई चिंता नहीं। वो आ गए तो सारे काम सद गए हमारे घर के, सब सुखी रहेंगे, हम, हमारे पशु, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा गांव, हमारी समाज सब सुख में रहेंगे। ये फायदा है भगवान के आने का। और एक किसका अतिशय है? केवल ज्ञान का। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है इसलिए ये अतिशय देवलोक करते हैं, ये भगवान नहीं करते कि इनके यहाँ अकाल न पड़ जाए, दुखी न हो जाए। ऐसा केवल ज्ञानी का कोई इसमें हिस्सा नहीं है। केवल ज्ञानी बनकर के आए हैं इसलिए उस केवल ज्ञानी की महिमा को प्रसारण करने के लिए देव लोग ये अतिशय करते हैं। क्या करते हैं, सौ योजन तक पानी बरसना, न अति बरसना न इति रूप से बरसना। जितना पानी बरसना चाहिए उतना ही पानी बरस जाता है। जितनी फसलों के लिए, फसलों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए माहौल चाहिए वही माहौल बना रहता है जब तक वो समोचरण वहां विराजमान रहता है। सौ योजन तक के जीव दुखी नहीं रहते भौतिक दृष्टिकोण से, ये केवल ज्ञानी का सर्वप्रथम अतिशय है। केवल ज्ञानी आ रहे हैं, तीर्थंकरों का समोचरण आ रहा है ये पता चल गया तो सौ योजन के अंदर के सारे प्राणी अभयदान को प्राप्त होने के बाद जैसे जीव निश्चिंत रहते हैं वैसे अभयदान को प्राप्त कर लेते हैं केवल ज्ञानी के आगमन से। ये प्रथम अतिशय है केवल ज्ञान का। दूसरा है आकाश में गमन। केवल ज्ञान होने के बाद केवली धरती पर नहीं चलते, जमीन पर नहीं चलते, कहाँ चलते हैं? आकाश में चलते। आकाश में गमन होता उस समय में भी अतिशय। क्या अतिशय? आकाश गमन तो है ही, किंतु उनके विहार होते समय देवलोक स्वर्ण के कमलों की रचना कर लेते हैं, सोने के। सोना तो बहुत महंगा है आजकल, देव लोगों के पास सोने की कोई कमी नहीं रहती। सोने की रचना कैसे? कमल की रचना चारों दिशा में, वो किधर भी मुड़े किधर भी जाए चारों दिशा में स्वर्ण कमलों की रचना होती है। भगवान जब पाद विक्षेप पूर्वक, विक्षेप पाद विक्षेप पूर्वक चलते हैं तो एक कदम रखते ही वहां कमल की रचना है नीचे, दूसरा कमल रखते ही वहां भी कमल है। कमल के ऊपर चलते और वे कमल पीछे पीछे के मिटते हैं और आगे आगे पुनः उत्पन्न होते हैं आकाश में। पीछे के आगे आ जाते हैं और वो चलते रहते हैं विहार के काल में। तो ये आकाश गमन नामक अतिशय है दूसरा अतिशय। ये कौन करते हैं? ये भी देव लोगों का काम, केवल ज्ञानी को अपने आप नहीं हुआ। केवल ज्ञान पाने के कारण से केवल रिद्धि प्राप्त है तीर्थंकर भगवान को, इसलिए इस रिद्धि की महिमा को जगत में फैलाने के लिए धर्म प्रभावना का कार्य ये है। ये सब क्यों करते हैं देवलोग? धर्म प्रभावना के उद्देश्य, धर्म प्रभावना क्या चीज है? धर्म और उसकी प्रभावना। धर्म क्या है? धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसकी प्रभावना, उसको धारण करने वाले केवली भगवान जो उच्च सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक तो क्षायिक सम्यक तो ज्ञान वो जो लेकर के आए हैं वो क्षायिक ज्ञान, चारित्र यथा क्या चारित्र, ऐसे रत्नत्रय के धनी केवली भगवान आए हैं। उस रत्नत्रय की महिमा को प्रकट करते, सेवा करते करते इस प्रकार उनकी सेवा होती है। किसकी सेवा? ये केवली की सेवा नहीं। केवली की क्या सेवा? उनके पांव हाथ पर दर्द होते हैं क्या? नहीं। ये कमल की रचना क्यों की जा रही है? ये धर्म की महिमा को प्रसारित करने के लिए। ये धर्म के पास इतनी शक्ति है, जिसके पास धर्म होता है देवावि तस्स पनमन्ति जस्स धम्मे सयामनो। देव लोग भी वहां नतमस्तक होते हैं जिनके पास रत्नत्रय है। तो नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? देव लोग भी नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? देवताओं की शक्ति मनुष्यों से कई गुना अधिक होती है। अधिक शक्ति वाले ही झुक जाते हैं तो कम शक्ति वाले विचार करने लगते हैं कि अरे देव लोग भी आने लगे और झुकने लगे, हम तो अपने को कमजोर समझते थे और शक्तिशाली लोग झुक रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं? देखने के लिए तो आएंगे कम से कम, किसके वजह से आ रहे हैं? एक धर्म और धर्मात्मा के वजह से आ रहे हैं। ये धर्मात्मा जहां जाएंगे, ये धर्मात्मा जहां रहेंगे, वहां पर देव लोगों का निवास स्थान तो हमेशा ही बना रहेगा। तीर्थंकर भगवान जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक तीर्थंकरों को छोड़कर देव हिलते ही नहीं। समो शरण में 8 सभाओं में असंख्यात देव रहते हैं। ये सब किस लिए रहते हैं? समो शरण में उपदेश देने के लिए, उपदेश सुनने के लिए आते हैं। तो किस लिए उपदेश सुनते हैं? वो आत्म कल्याण के लिए, उनको आत्म कल्याण चाहिए। और फिर आत्म कल्याण ही चाहते हैं तो फिर समोषण की रचना की क्या जरूरत थी? भगवान कहीं भी बैठ जाते, ऐसे मनुष्य लोग स्टेज बना करके दे देते और उपदेश सुन लेते। देवता लोग इधर बैठे हैं, मनुष्य लोग इधर बैठे हैं, मनुष्यों ने काम क्यों नहीं किया? ये मनुष्यों का काम नहीं, जो शक्तिशाली हैं एक मिनट के भीतर जैसा चाहिए वैसा धर्म सभा करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य करने लग जाएगा तो ये सब ले जाना पड़ेगा उठा उठा करके, और ले जाते समय कितनी बड़ी हिंसा होगी। हाँ, ये गाड़ी लाओ, ट्रक लाओ, ट्रैक्टर लाओ, खींचो, शुरू करो। तो ये सभी ढो करके ले जाना पड़ता है। भगवान के समोचरण की रचना करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य स्टेज बना सकते, समोचरण कैसे बनाएंगे? और उन समोचरण में कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष कहां से लाएंगे? वहां नाट्यशाला, भोजनशाला इत्यादि बहुत सारे हैं, किस किस को नाटक करने के लिए वहां नियुक्त करेंगे? कोई तैयार नहीं होगा। भोजनशाला में भोजन खत्म ही नहीं होता, सभी भव्य जीव आकर के भोजन करके चले जा रहे हैं लेकिन भोजन समाप्त नहीं हो रहा है। ये किसका अतिशय? ये केवल केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भगवान के पुण्य के उदय में, भगवान के सातिशय पुण्य के उदय में देव लोग आकर्षित होकर के वहां आए। भगवान ने बुलाया है क्या? आओ, मुझे केवल ज्ञान हो गया है, समोषण की रचना करो, ऐसा भगवान कहेंगे क्या? नहीं। तो कौन बुला रहा है? वो, हाँ, भगवान के पास जो पुण्य है ना, वे पुण्य कहाँ से आया? अभी तक जो त्याग तपस्या की है ना, इस त्याग तपस्या के फल स्वरूप साता वेदनी कर्म का, अच्छे अच्छे पुण्य प्रकृतियों का, और पिछले भव से भी चला आ रहा है पुण्य की संपत्ति, वहां से भी चली आ रही है, ये सब मिलकर के तीर्थंकर प्रकृति तो इतनी बड़ी पुण्य प्रकृति है, इसके समान पुण्य प्रकृति 148 कर्म में कोई भी नहीं है। एक तराजू ले लो और इधर एक तीर्थंकर प्रकृति रखो, और 148 कर्म में जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं उनको एक तरफ रखो तो भी ये बहुत भारी पड़ता है। ये एक है, वो बहुत सारे हैं, कौन सा भारी पड़ेगा? तीर्थंकर प्रकृति भारी पड़ेगा। तो जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति नामक पुण्य कर्म है उसके पास तो देवता लोग तो हमेशा प्रदक्षिणा देते रहते हैं चारों ओर। और ये नहीं है तो नहीं। तो कौन बुलाता है इन दो देवताओं को? पुण्य बुलाता है। पुण्य में ये ताकत है कि स्वर्गीय देवों को भी यहां ला करके उपस्थित करा सकता है। जब केवल ज्ञान होता है भगवान को, तो स्वर्ग में बताया जाता है कि इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। ये किसने कराया कंपायमान? पुण्य ने कराया। ये पुण्य पुद्गल है क्या जीव है? पुद्गल है। मोबाइल के जो रेंज जाते हैं वो जीव हैं क्या पुद्गल हैं? वहां यहां से वहां रेंज जाते हैं और वहां जाकर के उनके मोबाइल को कंपायमान करते हैं। हे तुमको इंद्र भगवान बुला रहा है। ये पुद्गल की शक्ति है। पुद्गल में शक्ति है। आप विश्वास नहीं करते पुण्य क्या कर सकेगा। पुण्य यहाँ और स्वर्ग वहां, वहां तक रेंज कैसे जाएगा? रेंज जाता है, मानना पड़ेगा इसको। अगर पुण्य के पास वहां तक जाने की रेंज शक्ति नहीं होती तो भगवान इंद्र का सिंहासन भी कंपायमान नहीं होता। पुद्गल की शक्ति को मानना पड़ेगा। पुद्गल की एक समय में नीचे से लेकर ऊपर तक जो तीन लोक है, 14 राजु है, नीचे से लेकर अधोलोक में न जहां नित्य निगोध है, वहां से लेकर सिद्ध परमिष्ट तक जाने के लिए एक समय पर्याप्त। ये भी पुद्गल परमाणु है। और ये पुद्गल परमाणु अगर पुण्य का हो तो फिर इधर केवल ज्ञान हो गया, उधर सिंहासन हिलने लगा। ये क्या हो नहीं सकता क्या? ये वैज्ञानिक तथ्य है, होना ही चाहिए, होता है, होता ही है। पुण्य बुलाता है, व्यक्ति नहीं बुलाता। देखो आप केवल नंबर ही दबा देते हैं, आओ ये कहते हैं क्या? नहीं, वहां भूकंप होना शुरू हो जाता है। कोई तो बुला रहा है। कौन बुला रहा है? आप देख लेते हैं। इंद्र को भी ऐसा देखना पड़ता है। ये सिंहासन ऐसा कैसा हिल गया? कोई जादू कर रहा है मेरे ऊपर, और कोई तपस्या कर रहा है मध्य लोक में, तो निश्चित बात है कि उसके पुण्य प्रभाव से मेरा सिंहासन यह हिल रहा है। कोई भी पुण्यवान जीवों पर उपसर्ग आया तो भी सिंहासन हिलता है, क्योंकि देव लोग ही उपसर्ग निवारण कर सकते हैं ना। तो किसका सिंहासन हिलता है? दो प्रकार के देव हैं, एक उपसर्ग करने वाला देव और एक निवारण करने वाला देव। सिंहासन किसका हिलेगा? निवारण करने वाले का। और जो उपसर्ग करता है उसका सिंहासन क्यों नहीं हिलता? हिलने की क्या जरूरत है? वो पीछे पड़ा रहता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सिंहासन हिलने की जरूरत नहीं। जिस पर उपसर्ग करना है उस जीव को ही ढूंढता रहता है, वो करना है। और ऐसे ढूंढने की बुद्धि क्यों आई? हाँ, ये पाप कर्म का उदय, ये वैर, वैर है। किसी भव में किया हुआ वैर इस भव में उदय में आ गया, तो वो जीव जिस पर हमको अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा नहीं लग रहा है, वहां पर जाने की बुद्धि होती है, वहां पर कष्ट देने की बुद्धि हो जाती है और कष्ट देने के लिए पहुंच ही जाता है। लेकिन जिस पर उपसर्ग कर रहा है वो व्यक्ति जाकर के, उसका वैर था ना, पूर्व भव का वैर था। पूर्व भव का वैर के बिना ये नहीं हुआ। किंतु जिस पर उपसर्ग करने के लिए जा रहा है, इनके पहुंचने पहुंचने तक यदि उनको केवल ज्ञान हो गया तो विचार करो, इसके परिणामों में जो विचार हैं वो बदलेंगे कि ऐसे ही रहेंगे? अवश्य बदलेंगे। यही तो कह रहे हैं भगवान, ये कार्मिक शक्ति है, ये कार्मिक शक्ति है, कर्म पुद्गल परमाणुओं का ये कार्य है कि वहां पर पुद्गल परमाणुओं की उन्होंने निर्जरा कर डाली तो उनमें रेंज शक्ति खत्म हो गई और इनमें वो रेंज शक्ति का खत्म हो गई तो रेंज नहीं बन रहा है, तो रेंज नहीं बन रहा है तो जहां जाने की बुद्धि हो रही थी वहां की जाने की बुद्धि समाप्त हो जाती है, कट हो जाती है, वहां जा नहीं पाएगा। ये है कर्म की शक्ति। ये सब कर्म का ही कार्य है। इस दुनिया में अब तक किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को, त्रिरंच हो, मनुष्य हो, मनुष्य कृत उपसर्ग, प्रकृति कृत उपसर्ग, देव कृत उपसर्ग, त्रिरंच कृत उपसर्ग, उपसर्ग चार प्रकार से होता है, चार के माध्यम से होता है, होता है कि नहीं होता? चार के, चार प्रकार से होता है और चार के माध्यम से होता है। अगर किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्रकृतिकृत उपसर्ग उन पर होगा? प्रकृतिकृत यानी क्या? भूकंप आदि? केवल ज्ञानी जहां होते हैं वहां भूकंप हो जाएगा क्या? सुविक्ष रहता ये कह रहे हैं, फिर भूकंप कैसे? नहीं होता। समो शरण में आज तक न कभी भूकंप हुआ है न होगा। समोषण तो आकाश में रहता है, आकाश में रहता है, भूमि तो नीचे है, भूकंप यहां होने वाला है, वहां तो पता ही नहीं चलेगा यदि हो भी जाए, लेकिन नीचे तक उसका प्रभाव रहता है, उनके पुण्य का प्रभाव नीचे तक रहता है, भूमि को हिलने नहीं देगा वो, ये भी पुण्य का उदय है। उपसर्ग आज तक इन चार प्रकारों का उपसर्ग केवली पर और सिद्ध परमिष्टि पर कभी हुआ है? दो पर उपसर्ग नहीं होता। मुनि पर हो सकता, मुनि अवस्था में जब तक वो हैं तब तक हो सकता है, वो भी क्यों होता है? तो इन्होंने अभी मोहिनी कर्म को नष्ट नहीं किया है, मोहिनी कर्म का क्षय होने के बाद तो उपसर्ग नहीं होगा। देखो मोहिनी कर्म में कितनी शक्ति है। हमने अभी कहा था कि आटो कर्मों को बंद कराने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। उपसर्ग कराने वाला कौन है? मोहिनी कर्म। उपसर्ग करने वाला किस कषाय के उदय में उपसर्ग करता है? कौन सी कषाय होती है? चार प्रकार के, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहिनी कर्म है। हाँ? उपसर्ग करने के लिए कौन सी कषाय का उदय चाहिए? क्रोध का उदय चाहिए, क्रोध का उदय चाहिए, और क्रोध के उदय में उपसर्ग करने के लिए पहुंच गया और वहां पर क्रोध नहीं है लेकिन क्रोध का उदय तो है, लेकिन क्षमाभावी होकर के वो बैठे हैं, उपसर्ग कर सकता है कि नहीं? ये कर सकता है। क्रोध के उदय में कोई भी कषाय का उदय हो, वहां मोहिनी कर्म का उदय है तो यहां उपसर्ग हो सकता है, यदि नहीं होगा तो पुण्य का उदय हो रहा है तो पिछले कोई ना कोई हाँ संबंध है, पिछले भव का कोई ना कोई संबंध है, उस संबंध के कारण से उपसर्ग कर रहा है। ये संबंध इसी भव के होते हैं ऐसा भी नहीं, पूर्व भव के भी संबंध होते तब उपसर्ग होता है। ये केवली भगवान आकाश में गमन करते हैं। चतुर्दिश मुख एक मुख रहते हुए भी चारों दिशाओं में दिखाई देता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भगवान चारों दिशा में दिखते हैं। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर से कोई भी भव्य जीवात्मा समूह शरण में प्रवेश कर रहा है तो भगवान दिखते हैं सामने। उनको लगता है कि अपने तरफ ही मुख करके बैठे हैं। उधर से आने वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपके तरफ नहीं, हमारे तरफ मुख करके बैठे हैं। इधर आने वाले वो कहते हैं कि तुम दोनों की तरफ नहीं, हमारे तरफ मुख करके बैठे हैं। उनको लगता है कि भगवान का सीधा मुख मेरे तरफ है। और ऐसा क्यों दिख रहा है? अतिशय। ये अतिशय किसने किया? पुण्य ने किया। पुण्य में कितना बड़ा शक्ति है? बहुत बड़ी शक्ति है। इस पुण्य का अर्जन करना चाहिए विशुद्ध परिणामों से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके इस पुण्य को बांधा जा सकता है। कामना के साथ ये पुण्य नहीं बंधता, क्योंकि ये तीर्थंकर प्रकृति का फल है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को होता है या मिथ्या दृष्टि जीवों को? सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। और एक गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि बन जाता है तो वह इस पुण्य को बांध सकता है। गृहस्थ भी बांध सकता है तीर्थंकर प्रकृति को, सम्यक दृष्टि गृहस्थ। कितना सस्ता है? मुनि ही बांध सकता है तो बहुत महंगा होता। कौन मुनि बने, वहां जाकर के कौन बांधे, ऐसा होता। ऐसा नहीं, ये सभी को। एक प्रतिमाधारी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, पंचम गुणस्थान वर्ती। एक अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी, चतुर्थ गुणस्थान वाला, वो भी बंध कर सकता है। लेकिन स्त्री पर्याय में इसका बंध नहीं होता। महाराज, हमको क्यों हटाया उसमें से? इतने तो अच्छे परिणाम रहते हमारे, बंध जाए ऐसा। और अपन ही तो तीर्थंकर भगवान को जन्म देते हैं और फिर हमको ही बंधता नहीं वो, ऐसा क्यों है? तो क्यों है? तो यूं है। क्या है? सोनन नहीं। भोग भूमि में प्रथम सहनन स्त्री को होता है। भोग भूमि में, कर्म भूमि में चौथा पांचवा छठा, ये हीन सहनन तीन होते हैं। हीन सहनन वालों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? पुरुषों को भी, हीन सहनन वाले पुरुषों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होगा? नहीं होता है। सहनन चाहिए। क्योंकि सहनन क्यों चाहिए? कि प्रथम सहनन धारी मनुष्य का जो मन होता है उसमें इतनी कैपेसिटी, इतना बल होता है कि विशुद्धि की चरम सीमा पर जहां तक जाना अनिवार्य है वहां तक वो जा सकता है। हम लोगों का मन वहां तक विशुद्धि को पाता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ बढ़ नहीं सकता, छू नहीं सकता उस शिखर को। ये चढ़ता है, चढ़ता चढ़ता यहां तक चढ़ता है, फिर गिर जाता है। इस विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। चढ़ना चाहिए, चढ़ते 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 परम विशुद्धि को, परम चरम सीमा पर जाकर के पहुंचना चाहिए। वो शक्ति नहीं है, हीन सहनन के भीतर ये शक्ति नहीं है। सम्यक दर्शन आप लोगों को है क्या? नहीं है, प्राप्त कर सकती। सहनन के अभाव के कारण, वही तो बता रहे ना। सहनन, प्रथम सहनन चाहिए तब इसका बंध होता है। वो स्त्रियों को कर्म भूमि में नहीं मिलता, पुरुषों को भी मिले ये कोई नियम नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चारों सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, चारों सम्यक तो का धारी जीवों को प्राप्त हो सकता है, है? प्रथमोपशम में उसको छोड़ेंगे, द्वितीयोपशम में होगा। क्यों मतभेद है क्या? अच्छा, दो आचार्य हैं, अलग अलग कहते हैं, तो आप दोनों को पूछ के आ गए, उनका मत अलग है, इनका मत अलग। शास्त्र में पढ़ा है द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के ऐसे उल्लेख तो ऐसा ही मिलता है, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। द्वितीयोपशम के साथ इसलिए हो रहा है, जिनको सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, वह श्रेणी चढ़ना चाहता है तो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और श्रेणी चढ़ने वाला जीव भले ही अंतर्मूर्त के लिए वह सम्यक्त्व का काल है और चढ़ रहा है, किंतु श्रेणी चढ़ते समय आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक इसका बंद बताया है। मान के चलो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति की प्रतिष्ठापना हो गई तो भी बंद निरंतर जारी है, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त को करते समय में भी बंद जारी रहेगा। मान के चले वो द्वितीयोपशम में ढल गया है, उस वक्त तीर्थंकर प्रकृति के बंद के परिणाम उत्कृष्ट रूप से हो गए, विशुद्धि कारण बन गए और बंद प्रारंभ हो गया, तो भी उसके साथ बंद का प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि छठे गुणस्थान के आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक इसका बंद बताया है। तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव, यह प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कितने गुणस्थानों में प्राप्त हो सकता है, है? क्यों उत्पत्ति की अपेक्षा से क्या सीधा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन छठे में नहीं होता, सप्तम में नहीं होता? हाँ, सातवें में, सातवें में भी डायरेक्ट प्राप्त हो सकता है, पंचम में भी हो सकता है। तो ये सम्यक दर्शन बहुत अल्प समय के लिए, छोटा अंतर्मूर्त है, और इसके साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंद के जो विशुद्ध परिणाम चाहिए वो सम्यक दर्शन के बल पर होते हैं। और द्वितीयोपशम सम्यक्त के साथ कैसा है कि पहला भी सम्यक तो था और बाद में भी है, वहां पर समय ज्यादा मिल जाता है बंद के परिणामों को बनाने के लिए, समय मिलता है। प्रथमोपशम सम्यक्तो में समय नहीं मिलता, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्तो अंतर्मूर्त भी होता है और वह मिथ्यात्व पर्याय से ही ऊपर आने वाला माना जाता है। हाँ, मिथ्यात्व, हाँ, उससे पुरुष मिथ्यात्वी था, इसलिए समय नहीं है ना, और बंद प्रारंभ करने के लिए पूर्व में कुछ समय सम्यक्त्व के परिणाम रूप समय चाहिए, वहां पर तो मिथ्यात्व है वो। किंतु क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, जब द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि बनता है उससे पहले भी वो भूमिका रेडी रखता हो, तैयारी है, और फिर बंद का प्रारंभ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ हो सकता है, इस अपेक्षा से उसको कहा है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अपेक्षा से कोई कथन नहीं मिलता, किंतु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, इनके साथ बंद का प्रारंभ कर सकने में कोई बाधा नहीं आती। उसमें इसलिए बाधा आती कि वहां समय नहीं है, पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा, सम्यक्त्व के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं है, और अभी अभी प्राप्त हो गया तो इतनी जल्दी से कोई भावना कैसे भाएगा, और भावना भाने से पहले उसका काल समाप्त हो जाता है तो बंध कैसे करेंगे। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ उसकी चर्चा मिलती नहीं है।
तो
नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा है कि उपवास इतने करने से नक्की बंद होता है तीर्थंकर प्रकृति का। तो बाहुबली भगवान तो एक साल तो खड़े थे। हाँ नहीं, उपवास का कोई शर्त नहीं है उसमें। एक भी जिसने उपवास नहीं किया उनको भी बंद हो सकता है, तो फिर उपवास का नियम कैसे रखा जा सकता है? ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा? नहीं, भावना चाहिए, विशुद्धि चाहिए, तब होता है। वो उपवास करना तप है, उपवास करना तप है, तप से कर्म की निर्जरा अवश्य होती है। और इस तप के साथ 15 भावनाओं में से एक भावना अवश्य भानी पड़ेगी, दर्शन विशुद्धि को निर्मल रखते हुए। दर्शन विशुद्धि भावना भी भाई जाती है, परंतु दर्शन विशुद्धि निर्मल होना ही चाहिए। पहला इसको निर्मल रखना चाहिए, बाद में इस दर्शन के साथ 15 भावनाओं में से एक भावना कोई साथ कर लो, प्रकृति का बंध हो जाएगा। हो ये नियम नहीं है? जो जो भावना भाते हैं उनको होता ही ऐसा भी नियम नहीं है। और वो भावना भाने वाला उपवास करता हो, संयमी हो, चारित्रवान हो, तो भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर बंद होने के लिए विशुद्धि गारंटी है। इतने लेवल के विशुद्धि होने पर इनको बंद प्रारंभ होता है। ये विशुद्धि कारण है, बंध में भावना कारण नहीं, तप कारण नहीं, संयम कारण नहीं। असंयमी को भी बंद हो रहा है ना। शंट परसेंट लोगों को लॉटरी नहीं लगती है, कहने पर भी आप लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हो? एक कोई लगेगा ना। एक कोई लगेगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसी से होगा। लेकिन जो भावना भा रहे हैं उनको होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। होगा तो भावनाओं के कारण से ही होगा, लेकिन जो जो भावना भा रहे हैं उन सबको होगा ऐसा नहीं है। पंचम काल में नहीं होता। हाँ नहीं होता है पंचम काल में, क्योंकि उत्तम सहन वाले जन्म नहीं लेते। पंचम काल शुरू होते ही तीन हीन सवनन होते हैं, मिलते हैं। इस केवली का पादमूल भी नहीं है। इस काल में क्यों करे, क्या फायदा, ये पूछो तो उसका हम उत्तर बताएंगे। होता ही नहीं है तो क्यों करते हैं ये लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करते हैं, देखो होता नहीं इनको मालूम है, उन्हीं से पूछो क्यों करते हैं पहले, फिर बाद में मैं बता दूंगा। षोडश कारण भावनाओं को भाते हैं, व्रत करते हैं, भावना भाते हैं, सम्यक दर्शन को निर्मल रखते हैं। तो कोई कोई सम्यक दर्शन को नहीं रखते हुए भी भावना भाते हैं, वो उनको तो बंद होगा ये नहीं होगा, ये गारंटी है। उनका लॉटरी टिकट तो उस डब्बे में ही नहीं गया, वो तो जमीन पर पड़ गया। मिथ्यात्व के साथ यदि भावना भाते हैं तो फायदा है ही नहीं, वो व्यर्थ जा रहा है। भाना नहीं भाना समान बात है, परंतु जो सम्यक दर्शन के साथ भा रहे हैं उनको बंद हो सकता है। लेकिन क्या आप वज्र शिव नारा सनन हैं, सननधारी हैं? क्या आपको केवली भगवान का पादमूल मिला है, फिर क्यों कर रहे हैं? विशुद्धि बढ़ाने के लिए, तो विशुद्धि विशुद्धि बढ़ाने के लिए कर, विशुद्धि बढ़ सकती है बंद के योग्य विशुद्धि आज क्या बढ़ सकती है? अगले भाव में हाँ संस्कार डालने के लिए करते हैं, ये सही है। ये आज के मनुष्य पर्याय में पंचम काल में यदि भावना भाव करके हम संस्कारित करते हैं तो यही संस्कार अगले जन्म में भी आते हैं। उस जन्म में हमको वज्र शुभ नारायण शरण मिल गया तो यहाँ पर तो संस्कार थे ही, थोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर वहाँ सम्यक दर्शन ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, इसलिए करते हैं। तो होने की आशा तो है हमें, लॉटरी टिकट जिस भाव में खुले या अगले भाव में खुले, खुलना तो चाहिए हा? आशा वो रखना चाहिए। और अगर नहीं भी होता है तो आपको क्या नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऐसा भी नहीं। विशुद्धि ये जो बढ़ गई है, इस विशुद्धि के कारण क्या अच्छे पुण्य कर्मों का बंद नहीं हुआ? अच्छा पाप कर्मों की क्या निर्जरा नहीं हुई? बहुत निर्जरा हो गई। तो ये भावना भाना ये व्यर्थ नहीं है, किसी न किसी मामले में वो सार्थक है। केवली, केवली किसको कहते हैं? तीर्थंकर केवली भी चल सकते हैं और सामान्य केवली भी चल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं परिधि हो या बाह्य हो, ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है उसका। केवल ज्ञानी अगर हैं तो उनके पादमूल में विशुद्धि बन सकती है। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, उनके सानिध्य में हाँ उनके प्रभाव में रहने पर विशुद्धि बढ़ती है। देखो अपन यहाँ बैठे हैं और आचार्य श्री यहाँ नहीं है, तो विशुद्धि जब साक्षात देखने पर सामने जो विशुद्धि बढ़ती है वो यहाँ बढ़ती है क्या? वैसा वो भी है। हो सकता है, केवली तीर्थंकर केवली सामान्य केवली हो बंद हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति का। साया है चतुर्दिश मुख, एक मुख रहते हुए भी चारों दिशाओं में दिखाई देता है, ये क्या तीर्थंकरों का ही केवल दिखाई देता है या सामान्य केवली जो होते हैं उनका भी दिखाई देता है? ये प्रश्न उठ सकता है। सामान्य केवली का भी दिखाई देता है हाँ, नहीं गंधकुटी की रचना उनकी होती है हाँ, गंधकोटि की रचना जिनकी आयु अधिक है उनकी गंधकोटि की रचना होती है और उनका भी चतुर्मुख दिखता है। गंधकोटि में भी चार प्रवेश द्वार होते हैं चारों दिशा में और आठ सभाएं भी होती है, लेकिन वह गंधकोटि यानी कोटि कोटि कोटिया छोटी होती है और समोशरण समोशरण बृहद आकार वाला होता है, बड़े प्रमाण में रहता है। वो भी उठते हैं, वो भी उठते हैं, उठने का कोई प्रमाण हो सकता है लेकिन उठते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी कभी धरती पर चलते नहीं है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद तो सामान्य रिद्धिधारी मुनि आकाश में चल रहे हैं और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद आकाश में नहीं चलेंगे। नियम से शरीर परम अवधारिक बन जाता है वहां और हल्का भी बन जाता है और वो आकाश में ही चलेगा। हाँ, ऊंचाई पर चलते हैं पर कितनी ऊंचाई उनकी होती है ये कह नहीं सकते। हाँ, आकाश में तो उनका शरीर आकाश में तो होता है, विहार भी होगा तो आकाश से ही होगा। पर जैसा तीर्थंकरों का विहार देव वैभव के साथ होता है ऐसा उनका बाह्य वैभव छोटे प्रमाण में रहता है। हाँ, कोई फर्क नहीं। तीर्थंकरों का अनंत ज्ञान केवल ज्ञान और इनका अनंत ज्ञान केवल ज्ञान कोई फर्क नहीं, समान है। उनका अनंत सुख इनका अनंत सुख समान है। अदया चौथा नंबर, अदया हिंसा का अभाव। हिंसा का अभाव कहां पर? समोशरण में किसी भी जीव को कष्ट नहीं होता। लाखों लोग पहुंच जाते हैं किसी की मृत्यु नहीं होती। समोशरण में रहते रहते हाँ वैर भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, क्रोध नहीं आएगा, वैर नहीं आएगा, हाँ प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, आंखें नहीं दिखती हो तो आंखें आ जाएंगी, चश्मा की जरूरत नहीं है, सीधा ही भगवान दिखेंगे आपको, जन्मांध को भी ले जाएंगे तो भी दिख जाएगा, हाँ दिखने लायक हो जाएगा वो। ये सब देवकृत अतिशय है। बाहर आ गए तो फिर हो गया, फिर ज्यों का त्यों। क्या हो गया? हाथी के पांव के नीचे कुचल गया तो समोशरण में जा रहा था, तो समोशरण में जा रहा था कुचला गया। ये हिंसा की एक सीमा है ना, अभी बताया पहला अतिशय क्या है वो सौ योजन सुभिक्ष। समोशरण में हिंसा नहीं होती। संयोजन तक तो कोई जीव अकाल की अनुभूति नहीं करेगा। संयोजन तक दुर्भिक्ष का निषेध है। हाँ बाहर बाहर होगा, बाहर भी नहीं, क्योंकि राजा श्रेणी कहाँ थे? राजगृह में। और समोशरण कहाँ आया था? कितनी दूरी है वहां से? संयोजन है क्या? तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर केवल सुभिक्ष से मतलब है। उस अवधि के भीतर कोई जीव मर भी सकता है, परंतु समोशरण के अंदर किसी जीव की हिंसा नहीं होती। जन्म मरण नहीं होता, जन्मेगा भी नहीं, मरण भी नहीं करेगा। जन्म घर में होता है। प्लस पॉइंट है। हिंसा नहीं होगी, हिंसा का अभाव है केवली भगवान के समोशरण के अंदर। सभा के अंदर कहो या समोशरण के परिधि में कहो, कोई मरण आदि कोई जीव मार रहा हो, मर रहा हो, ऐसी बात नहीं होगी। वो तो समोशरण के बाहर की घटना है। जो नेंडक मर गया, बाहर की घटना है। अब कोई हाथी है समोशरण में आया, वहां पर मेंढक भी गया है, त्रिंज सभा में ही जाएगा ना, तो हाथी के पांव के नीचे वहां दब के मर जाए ये संभव नहीं। सभा में वहां हिंसा नहीं हो सकती, वहां वैर नहीं हो सकता, वहां क्रोध नहीं आ सकता। शत्रु और मित्र दोनों ही मिल करके बैठ जाते। हाँ, पांचवा उपसर्ग का अभाव। उपसर्ग का अभाव, समोच्चरण में किसी पर, भगवान पर या किसी पर उपसर्ग करने वाले लोग नहीं रह सकते। हाँ? रहते हैं समोचरण में, मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, अभव जीव भी रहता है, उसकी एक सीमा होती है, वहां तक जाता है वो भी, किंतु समोचरण सभा के अंदर मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं या नहीं रहते, ये प्रश्न अलग है। समोचरण की परिधि में तो मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, समोचरण के सभा के अंदर मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं कि नहीं रहते, ये बात अलग है। इसमें दो मत है, दो आधार हैं, दो मत हैं। एक मत से ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव सभा में नहीं होते, दूसरा मत है कि होते भी हैं। तो जहां तक नहीं होते हैं यही सही लगता है। किस दृष्टि से सही लगता है? सभी सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, और मिथ्या दृष्टि जो रहते हैं वो सभा में जाते नहीं। जो सभा में रहते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। मिथ्यात्व को लेकर वहां बैठ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है, ये भी एक मत है। क्योंकि भगवान का उपदेश सुनने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। भगवान का उपदेश सुनने के लिए जाने वाला संयम ग्रहण करने के भाव से जाएगा, भगवान के पास संयम मिलेगा। सम्यक दर्शन तो देखो, जिन बिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ऐसा तो सब जगह कहा है। भगवान का उपदेश सुनकर या भगवान का दर्शन करके सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है ऐसा कहीं भी नहीं आता शास्त्र में। हाँ, बाधा होता ही नहीं है तो बाधा कैसी? हाँ, नहीं, हम क्या कह रहे हैं, समोचरण सभा में मिथ्या दृष्टि जीव प्रवेश नहीं करते। जो मिथ्यात्व के साथ समोचरण में गए हैं वो सभा में न जाकर परिधि में अटके रहेंगे, और यदि सभा में जाने के भाव आ गए तो सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना सभा में प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं होता ही नहीं, जाने के भाव ही नहीं होते वहां। हाँ, वहां पर जिन भी दर्शन है, कोई देव भी आपको संबोध सकता है, सम्यक दर्शन धारण कर लिया और सम्यक दर्शन के बाद आपको आस्था आ गई, चलो भगवान का उपदेश भी सुन ले फिर, ऐसा धर्म की महिमा है, तो बाद में भाव आना बात अलग है। समोचरण में रहने वाले मानस स्तंभ के दर्शन से तो सम्यक दर्शन जिनको होना है हो ही जाएगा। गौतम का क्या हो गया? गौतम गंधर्व का मानस स्तंभ को देख करके अनंत अनुबंधी मान कषाय का गलन हुआ, उनको क्षौक्षम सम्यक तो हुआ और वे महावीर भगवान के पास गए तो वहां वैराग्य हुआ, संयम के परिणाम जगे। सम्यक दर्शन के परिणाम मानस स्तंभ से और संयम के परिणाम भगवान के उपदेश से, ये ठीक लगता है। हाँ, वाणी लिया बोला, शास्त्र पढ़ने से हो जाएगा या उस वाणी को जिसने सुना है सुनी हुई वाणी को आपको सुनाने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, किंतु भगवान के सामने वाणी सुनने के लिए अंदर जाता ही नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव, तो होगा कैसे? वाणी निमित्त मिल नहीं सकती, सम्यक दृष्टि बनकर के ही जाएगा ना। तो सम्यक दृष्टि बनकर के वाणी को सुन रहा है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा कि संयम दर्शन संयम को प्राप्त करेगा? हाँ, जो भगवान के पास जाएगा वो संयम के लिए जाएगा, और जो मुनि के पास जाएगा वो सम्यक दर्शन के लिए जाएगा। सब सम्यक दृष्टि रहते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं नियम से। हाँ जाएंगे ना, सम्यक दर्शन है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष सभी का रहता ही है, नियम से जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव जिनबिंब का दर्शन करके, मानस स्तंभ का दर्शन करके सम्यक दृष्टि बन जाता है, और सम्यक दृष्टि अंदर जाता ही है ऐसा नियम भी नहीं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, पर जाने वाला जो रहेगा वो सम्यक दृष्टि ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि को उपदेश सुनने का अवसर ही नहीं है वहां, फिर सम्यक दर्शन उपदेश के निमित्त से सम्यक दर्शन कैसे होगा? अब दर्शन से कहो उपदेश नहीं हो रहा है, भगवान बैठे हैं मौन बैठे हैं, दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ये भी कहते हैं तो ये भी नहीं बैठता, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं आया शास्त्र में कि साक्षात भगवान के दर्शन से इस जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। नहीं होता, ऐसा क्यों? इसका उत्तर सुनो, बहुत मजेदार है, सुनो इसका उत्तर, ऐसा क्यों? एकाएक ही आचार्य श्री को देखोगे, आचार्य श्री की महिमा आपको पता नहीं लगेगा, और किसी ने आचार्य श्री के संबंध में वर्णन करके बताया कि वो ऐसे 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 भूमिका बना दी, तो आपकी आस्था बढ़ती है, घनीभूत होती है, और आस्था टिकती है, फिर देखने के परिणाम होते हैं। किंतु आस्था जिसने जगाई उसी समय आपको सम्यक दर्शन हो गया होता है, दर्शन तो आप उनका बाद में करेंगे। श्रद्धा देखते समय नहीं होती, साक्षात को साक्षात की महिमा सुनते समय श्रद्धा जागृत होती है, और मूर्ति उस महिमा को बतलाने के लिए प्रतीक है, और मूर्ति को हम मूर्ति ही समझते हैं, मूर्ति ही इतनी सुंदर तो ये किसकी मूर्ति? भगवान की, महावीर भगवान की। तो ऐसे महावीर भगवान है क्या अंदर? हाँ है ना, अंदर जाओ। अच्छा ये मूर्ति इतनी सुंदर तो महावीर भगवान कितनी आ गई आस्था। तो ये आस्था जो है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में विशुद्धि में कारण बनकर सम्यक दृष्टि तो यही बाहर ही सम्यक दृष्टि बन जाता है वो। फिर उनको देखने के लिए जब वो अंदर जाता है तो देख लेता है, उस समय क्या सम्यक दर्शन होने वाला है, अब देख करके रम जाता है, वहां रम जाता है तो बैठ ही जाता है, उपदेश भी होने वाला है ऐसा कह रहे हैं सभी लोग, टाइम भी 3 बज गया है और उपदेश होने वाला है, हम सुन लेते भगवान क्या बोलते हैं। तो वहां पर जो व्याख्यान होता है भगवान का, उपदेश होता है, उस उपदेश में संयम का व्याख्यान, फिर उसकी भूमिका बनती है, बने ये नियम नहीं, चारित्र की भूमिका, संयम धारण करने की भूमिका उसकी बन जाती है। तो संयम धारण करने के लिए भी 3 करण करने पड़ते हैं, अधक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। उपदेश सुनते सुनते ये 3 करण बन सकते हैं, बने ये नियम नहीं लेकिन बन सकते। तो अर्थ ये हुआ, भगवान जो उपदेश देंगे वह उस उपदेश से हम सम्यक दृष्टि नहीं बनते, संयमी बनते। सम्यक दर्शन तो पहले से ही होता है, हम संयमी बनते हैं, और संयमी नहीं बनते हैं तो नहीं बनते हैं, चले जाते हैं सुन करके, समूह शरण में जाने के बाद मोहनी कर्म अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी, ये मोहनी कर्म सताते हैं, किंतु भगवान का उपदेश निमित्त बन सकता है इस मोहनी कर्म के गलन में, उपशमनादि में, विशुद्धि को पैदा करने में वो उपदेश निमित्त बन सकता है। बन जाए तो मुनि बन जाएगा या तो देश संयमी बन जाएगा, और ये दोनों नहीं बना तो सम्यक दर्शन के साथ ही लौट करके आएगा। ये ठीक लगता है, भगवान के सभा में जाने के बाद यदि सम्यक दर्शन होता है किसी को, ये कहेंगे तो किससे हुआ प्रश्न उठेगा, भगवान को देखने से? तो ये आगम में तो मिलता नहीं कि भगवान को देखने से, दर्शन करने से किसी जीव को सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। धर्म श्रवण तो है, लेकिन वह धर्म, उस धर्म श्रवण से केवल चारित्र ही उत्पन्न होगा, चारित्र ही उत्पन्न होगा, क्योंकि वहां जो उपदेश होगा वह क्या उपदेश होगा बोलो? सम्यक दर्शन के बारे में उपदेश भगवान ने दे दिया, मान लो सम्यक दर्शन के बारे में उपदेश दे दिया, सच्चे देव कैसे होते हैं, तो सच्चे देव ही सच्चे देव कैसे होते हैं ये बता रहे तो सम्यक दर्शन की भूमिका कैसी बनेगी? सच्चे देव कैसे होते हैं इस आस्था को जगाने के लिए कोई दूसरा ही चाहिए, या तो प्रतिबिंब चाहिए, या तो अन्य जो सच्चे देव नहीं है उनका उपदेश चाहिए। देवों के द्वारा उपदेश देने पर भी सम्यक दर्शन हो रहा है, तो देव क्या समझा रहे हैं? सच्चे देव ऐसे होते हैं ये समझा रहा है, सच्चे गुरु ऐसे होते हैं, सच्चे शास्त्र ऐसा होता है ये समझा रहे हैं, तो उससे सम्यक दर्शन की भूमिका उसकी बन जाती है। देखो एक मानसिकता है, ये सामान्य रूप से एक मानस कैसा रहता है व्यक्ति का देखना। आचार्य श्री प्रत्यक्ष हों तो उनके सामने ही बैठ करके आचार्य श्री ऐसे हैं वैसे हैं इन पर श्रद्धान करो, ऐसा करने से विशुद्धि नहीं पड़ती। आचार्य श्री को बाजू रखो, उनको एकांत में ले जाओ, उनको समझाओ आचार्य श्री वैसे हैं ऐसे हैं, तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है, वहां श्रद्धा जगती है। ये फैक्ट है, कोई वस्तु सामने रख करके समझाओगे ना उसका महत्व समझ में नहीं आता, ये मानसिकता है, ये मानसिक चर्या देख करके संयम धारण करेगा वो, सम्यक दर्शन नहीं। आस्था जगाना ये सम्यक दर्शन है, चर्या को देखकर वो चारित्रवान बनेगा, भगवान को देखकर के गंधर्व परमिष्टि को संयम के भाव जग गए, मुनि बन गए वो। चर्या को देखने से चारित्रवान बनना संभव है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर होता तो जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन से क्यों नहीं हो रहा है सम्यक दर्शन? साक्षात भगवान के दर्शन से उसको निमित्त माना नहीं जा रहा है। ये विषय बड़ा चिंतनीय है। जिसको आंखों से देखा नहीं उसको ज्यादा वर्णन करने से आपका आकर्षण उस तरफ करोड़ गुना हो जाता है, पर उस वस्तु को सामने ही रख करके आकर्षण जगा नहीं सकते, हम आस्था को प्रबल नहीं बना सकते। वस्तु को सामने रखकर।
जैसे आप अभी प्रवचन में बता रहे समोचन की रचना है, ये है, वो है, सब तो हमारा मन उस तरफ आकर्षित हुआ।
हाँ,
क्यों? आपको देखा हाल आपको बता दे।
हाँ,
सभी को।
हाँ,
और हमारा चिंतन उस तरफ जा रहा है,
उस तरफ जा रहा है।
हाँ, ये समोचन की तरफ जा रहा
है, जा रहा है। तो समूह शरण की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है क्या? नहीं, श्रद्धा बढ़ रही है क्या? नहीं, सम्यक दर्शन यहाँ होगा, वहाँ सभा में जाने से नहीं होगा। यही बात है, यही सच है, यही सच लगता है। हाँ, बहुत सुना हुआ रहता है ना, बहुत पहले से सुना हुआ रहता है, तो वो आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है, उस आस्था के अंदर विशुद्धि बनती है। साक्षात वस्तु के सामने बैठ करके वस्तु की महिमा बताओ, विशुद्धि चरम सीमा पर नहीं जाती। आचरण दिलाया जा सकता है, वो जो जैसा कर रहे हैं वैसा करोगे क्या? हाँ करोगे, हाँ ले लो आशीर्वाद, ले लो। आचरण आ सकता है, पर आस्था, आस्था बहुत मूर्ख। आचरण से आस्था अलग चीज होती है, उसकी महिमा ही अलग है, उसका क्षेत्र भी अलग। आस्था जगाने के लिए वस्तु को परोक्ष रख करके आस्था जगाना चाहिए। देखो, जो व्यापारी होता है ना, वो जब फल वगैरह बेचता है तो सारे फल वह अंदर रखता है और सैंपल बाहर रखता है, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास टेस्टिंग वाला टेस्टी वाला सैंपल है उसको बाहर रख, क्वालिटी वाला। और अंदर से लाते समय क्वालिटी हीन क्यों न लाए, देने के लिए लाता है, लेकिन बाहर जो काट करके रखता है ना, क्वालिटी वाला रखता है। क्योंकि अंदर माल तो कच्चा भी है और पक्का भी है, लेकिन इनको बेचना है कच्चा माल ज्यादा पक्के के साथ, ये पक्की बात है, ऐसा होता भी है। ये होता है, होते के लिए क्या करता है वो, माल को जो टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, वो टेस्ट के लिए थोड़ा सा भी देता है तो उसकी आस्था माल के प्रति दुगुनित होती है। वस्तु को सामने दिखाने से नहीं होगी, वस्तु को सामने रखोगे ना उसका आकर्षण कम होगा। खाता हुआ देखेगा वो, हाँ ठीक है वो चाहिए, इतना ही कहता है, लेकिन आस्था प्रगाढ़ नहीं हुई। आस्था को प्रगाढ़ बनाने के लिए माध्यम क्या है? क्या वस्तु ही ला करके रख दे क्या? जब आप खाना खाने के लिए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और आपके थाली में आधी ही रोटी डाल दी गई और वहां पर 10-15 रोटी है पर दिखाया नहीं गया, सामने ला करके दिखाया नहीं गया। दिखाएंगे ना, भूख ही मिटती है। हाथ बाना तो औषधंग आ गई थे। भूख मिट जाती है। इससे वस्तु को देखते ही भूख मिटेगी तो आकर्षण कहां पड़ा? वैसी होती है। खाने वाला कितना मतलब आकर्षण से खाता है, बनाने वाले उतने आकर्षण से क्यों नहीं खाते? यही कारण है। समोशरण में यही कारण है, वहां सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, इसका कारण यही है। उतनी बनी बनाई रोटी है, वहां उसको दिखाएंगे नहीं, रोटी कैसी है, कैसी बनी होती है, वहां पर बाहर ही उसकी चर्चा, समोषण के बाहर कोई कर देता है ना, तो आस्था तो रोटी के प्रति जग जाती है, वो सम्यक दर्शन है। अब रोटी खाने के लिए अंदर आएगा, वो जब वो खाने लग जाएगा तो रोटी इतनी, तो फिर संयम की रोटी कितनी, वो और टेस्टीला होगा। तो रोटी को खाने की इच्छा होती है तो संयमी भी बनता है वो। गौतम गणधर को क्या आवश्यकता थी कि वहीं पर सम्यक दर्शन हो गया, मानस स्तंभ का दर्शन करते हुए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की प्राप्ति भगवान के साक्षात सानिध्य में पाते, प्राप्त करते, नहीं किया। सम्यक दर्शन वही हुआ, वहां क्या दिखा? साक्षात भगवान दिखे क्या? नहीं। भगवान कैसे हैं समोशरण में? मूर्ति में ही इतनी महिमा है तो अंदर कितनी महिमा। तो उधर आकर्षण ज्यादा होता है इसको देखकर, विशुद्धि यहां बढ़ती है, आकर्षण उधर चला जाता है। और जब वहां जाता है तो यहां विशुद्धि से सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, और वहां पर आकर्षण के स्थान पर जाने पर चारित्र के भाव होंगे। सम्यक दर्शन के बाद क्या उत्पन्न होने वाला है? चारित्र। और चारित्र प्राप्त हो गया तो फिर केवल ज्ञान। क्यों? क्योंकि चारित्र प्राप्त करके भगवान महावीर कैसे तपस्या कर रहे हैं वैसे ही तपस्या ये भी करेंगे। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया तो ऐसी तपस्या से इनको भी केवल ज्ञान होने वाला है, तो ये भी वैसे ही तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोनों केवल ही हो गए। अब दोनों कहाँ जाएंगे? मोक्ष। तो मोक्ष करने के लिए भगवान ने क्या किया? उन्होंने योग निग्रह किया, अयोग केवली बन गए, तो ये भी अयोग केवली बनेंगे। गौतम गणधर पीछे पीछे, महावीर भगवान आगे आगे। मोक्ष कौन पहले गए? महावीर भगवान पहले मोक्ष गए। कब गए? दीपावली के दिन। कब गए? सुबह सुबह गए, सुबह सुबह गए। गौतम गणधर कब गए? गौतम गणधर मोक्ष कब गए? नहीं मालूम। शाम को मोक्ष गए। हाँ, केवल ज्ञान। देखो एक को सही मालूम है, वो थे वहां साक्षात। उस समय तो केवल ज्ञान हो गया था, मोक्ष नहीं गए थे वो। देखे होंगे, संस्कार हैं पूर्व में देखे हुए। महावीर भगवान जब मोक्ष जाते हैं तो ये नियम है, जो भी उनके शिष्य रहते हैं ना, वो भगवान से पहले, गुरु से पहले कभी मोक्ष जाते नहीं हैं। और गुरु जब तक केवल ज्ञान में स्थित हैं, अरहंत अवस्था में स्थित हैं, इनको केवल ज्ञान होता नहीं है। उनको मोक्ष होने के बाद इनको केवल ज्ञान होता है, और इनको मोक्ष, उनके मोक्ष जाने के बाद इनको मोक्ष होता है। ऐसा नियम है गौतम गणधरों का, गणधर परमिष्टियों का, गणधर परमिष्टि सभी गणधर ऐसे ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो, कारण क्या है? बड़ों का आदर, आदर। ये आदर का प्रश्न नहीं, सुनो सुनो, आदर का प्रश्न नहीं है ये। देखो देखो देखो, तीर्थंकर से पहले अन्य जीव क्या मोक्ष नहीं जा रहे हैं? ऋषभनाथ भगवान से पहले भरत चक्रवर्ती के वो 923 क्या मोक्ष नहीं गए उनके सामने? क्या अनादर किया क्या? फिर अनादर हुआ क्या? पोतों के माध्यम से अनादर हो गया क्या? आदर अनादर का सवाल नहीं यहाँ, आदर अनादर का सवाल नहीं। सुनो सुनो सुनो, आदर अनादर का सवाल नहीं। गौतम गणधर जिस पद पर बैठे हैं, काय के लिए बैठे हैं? काय के लिए बैठे हैं? क्या विकल्प है? हाँ, उनकी वाणी को झेलने के लिए। और झेलने का काम कब तक का है? जब तक वो मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक है। समोशरण का विसर्जन जब तक नहीं होगा तब तक है। तो इस काम पर बैठे हैं तो उस काम का विकल्प रहेगा क्या? नहीं। हाँ, उस काम का विकल्प करते करते कभी केवल ज्ञान होगा? हाँ। देखो, आचार्य पद पर रहने वाले आचार्य पद को छोड़कर ही संलेखना लेते हैं, इसमें कौन सा कारण है? ये संलेखना नहीं होती तो संलेखना ही नहीं होती है तो केवल ज्ञान क्या होता? हाँ, गंधर परमिष्टि का मतलब वहां वो एक जवाबदारी का काम है। उपाध्याय परमिष्टि जैसे हैं, वो आचार्य परमिष्टि जैसे हैं, तो ये त्याज्य हैं क्या? नहीं, दोनों पद और यही गंधर हैं। ये मोक्ष चले जाएंगे तो वहां पर कौन गंधर वाणी को झेलने वाला कौन रहेगा वहां? तो इसलिए उनको भगवान से पहले केवल ज्ञान नहीं होता, भगवान के समक्ष भी नहीं होता। वे समोशरण सभा में बैठे हैं और ये इनको केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी भी गंधर्व को नहीं होगा जितने रहते हैं वहां। ना? हाँ, तो ये कारण समझ में आ गया ना। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, समोशरण में है, इनको केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? विकल्प है, जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी पद के साथ रहते रहते केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान भी निर्विकल्प समाधि में लीन होने पर होता है। जो निर्विकल्प समाधि पंडित मरण के लिए कारण है, संलेखना के लिए कारण है, ऐसा संलेखना के लिए जब आचार्य पद आदि त्याग करने पड़ते हैं तो गंधर्व पद को भी त्याग किए बिना, उस काम को बंद किए बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। जिम्मेदारी का पद है, वो नहीं है तो फिर कौन है? भवि जीवों को उपदेश सुनाने वाले, इसलिए ध्यान में वो बैठ नहीं सकते निर्विकल्प रूप से। तो क्या शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं होगा, ये मोक्ष नहीं होगा, तब तक वो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। इधर भगवान को मोक्ष हो गया, ये श्रेणी चढ़ गए। देखो कितना फर्क पड़ गया। महावीर भगवान को सुबह सुबह निर्वाण की प्राप्ति हुई दीपावली के दिन, और गौतम गंधर्व को श्रेणी चढ़ने के लिए कितने घंटे लगे? शाम को चढ़े वो क्षपक श्रेणी। क्षपक श्रेणी चढ़कर घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया शाम को। उपशम श्रेणी गौतम गंधर्व परमिष्टि नहीं, उपशम श्रेणी क्यों चढ़ेंगे? कोई काम नहीं उपशम श्रेणी चढ़ने का। क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, जब देखो कहीं उल्लेख आता है ये आगम में, भगवान मोक्ष जाने वाले थे और समय निकट आया तो गंधर्व परमिष्टि जाकर के पूछे महावीर भगवान से, भगवान आपका समय तो आ चुका है, अब हम किसका उपदेश सुनेंगे? मन में तो विकल्प आता है, क्या करें हम? तो महावीर भगवान बोले उनसे, हे गोदम मापमय, एक ही सेंटेंस दे दिया, सूत्र दे दिया, हे गौतम प्रमाद मत करो, इतना ही कहा और बस मौन हो गए, ध्यानस्थ हो गए, उनको मोक्ष हो गया। मापमय कहा था ना, उसका चिंतन उन्होंने इतना गहराई से किया कि उस क्षेत्र को छोड़ दिया। इधर दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए, तो इसको देख करके वहां से उन्होंने विहार किया और कहां चले गए? नवादा। नवादा है, नवादा में जाकर के वे भी क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होने के लिए प्रयत्न करने लगे और चिंतन करने लगे। भगवान ने कहा है सुबह सुबह, मापमय, हे गौतम प्रमाद मत करो, पहले ही कहा होगा उनने, मापमय प्रमाद मत करो, मतलब क्या? प्रमत्त अवस्था में विकल्प रहते हैं। अब तक तुमने खूब विकल्प किया है, अब तुम्हें विकल्प करने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है तो प्रमाद क्यों करोगे? विकल्प मत करो, अब कोई तुम्हारा काम विकल्प करने का रहा नहीं। इतना कहते ही निर्विकल्प हो गए। भगवान का उस सूत्र पाक करके, साधना सूत्र को जा करके क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हो गए, विकल्प को छोड़ दिया। तो विकल्प कब छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? हाँ, जिस समय वो वहां से निकले उस समय गणधर पद के सारे विकल्प छूट गए। महावीर ही मोक्ष जाने वाले हैं तो फिर विकल्प कोई बचा ही नहीं। जा करके ध्यान में आरूढ़ हो गए तो उनको प्रथम शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो गई, क्षपक श्रेणी चढ़ गए और घाती कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। फिर उनको भी गंधकुटी की रचना हो गई, कुछ समय तक केवल ज्ञानी रहे वो, और उनका मोक्ष कब हुआ है? चतुर्थ काल में क्या पंचम काल में? गौतम स्वामी को पंचम काल में मोक्ष हुआ है, क्योंकि 3 वर्ष 8.5 माह बचे थे जब महावीर भगवान को निर्वाण हो गया था। चतुर्थ काल के 3 ही साल बच गए थे, 8.5 माह। तो गंधकुटी के साथ उपदेश देते हुए वे गौतम स्वामी केवली बनकर विहार तो किया होगा ना, पंचम काल के भव्य जीवों को भी उपदेश दिया होगा ना। हमको तीर्थंकर का उपदेश नहीं मिला पंचम काल में, लेकिन उनके शिष्य गौतम स्वामी केवली बनकर उपदेश हमको अवश्य दिया है, अवश्य दिया है। देखो, जम्बू स्वामी, सुधर्म स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी पहले सबसे बड़े हैं वो, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्म स्वामी और कौन, जम्बू, 3 केवल ज्ञानी हुए पंचम काल में, और इनको मोक्ष पंचम काल में ही हुआ है। पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, इनको कैसे हो गया? हाँ, जन्म तो चतुर्थ काल में हुआ था और चतुर्थ काल में होने से वज्र ऋषभ नारद सनन प्राप्त हो गया था। अब जन्म और सौनन ये दोनों चतुर्थ काल में हुए हैं तो फिर मोक्ष जाने में कोई आपत्ति नहीं आती। पंचम काल में जन्मने वाले जीवों को सौनन नहीं मिलता, इसलिए मोक्ष नहीं होता। कौलाहार का अभाव, केवली भगवान कौलाहार नहीं करते। कौलाहार यानी क्या? जैसे मुनि अवस्था में आहार करते थे, ग्रास, कवल यानी ग्रास, ग्रास खाकर अपनी क्षुधा वेदना को दूर करते थे, वैसे क्षुधा वेदनी दूर करने का प्रसंग केवल ज्ञान के बाद नहीं है, क्योंकि भूख जो लगती है कौन से कर्म के उदय से लगती है? सातावेदनी, सातावेदनी से तो भूख मिट जाती है। हाँ, असातावेदनी और मोहनी कर्म, इन दोनों का जब उदय होता है, उदीर्ण होती है, तब जो है ना भूख लगती है। मोहनी कर्म और असातावेदनी कर्म के उदय से भूख लगती है। अब केवल ज्ञान के बाद कवलाहार की आवश्यकता नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास मोहनी कर्म भी नहीं है और असातावेदनी कर्म का यदि उदय है भी तो बहुत मंद वाला है, और वह मंद भी है और एक तरफ उसका साथी मोहनी कर्म चला गया है। संक्रमण हो या न हो, वहां पर असाता का भी उदय होता है। साता के साथ साथ असाता का भी उदय होता है, लेकिन उसका फल नहीं मिल सकता, साता का ही निरंतर फल मिलता है। वो इतना मंद होता है कि मंदता का फल की अनुभूति होती ही नहीं, इतना मंद है। सूरज के सामने उद्बत्ती दिखाएंगे तो उसका प्रकाश का अस्तित्व दिखाई देगा क्या? रात में पकड़ो उद्बत्ती को तो उसका प्रकाश कुछ न कुछ दिखाई देता है, दिन में लाइट भी जला करके पकड़ो तो भी अस्तित्व नहीं होता उसका। तो वैसे असाता वेदनी कर्म का इतना कम अनुभाग है कि उसका कोई अस्तित्व फल दिखाई नहीं देता। ये केवली भगवान कौलाहारी नहीं होते, ये हो गया। सातवां, समस्त विद्याओं का स्वामीपना, भगवान सर्व विद्याओं के स्वामी हैं। सभी विद्याएं, विद्याएं कितनी होती हैं? 700 लघु विद्याएं और 500 नहीं लघु विद्या हाँ 500 महाविद्याएं, ये 1200 विद्याएं होती हैं। इन विद्याओं का स्वामी होकर के भी उन विद्याओं का कोई प्रयोजन उनको नहीं है। भगवान कोई जादूगर नहीं है कि आपको वो विद्या सीख करके आपको दिखा दें, इसकी कोई उनको जरूरत नहीं है। लेकिन जादू का ज्ञान भगवान को होता है कि नहीं? होता है, इसलिए तो उपदेश देते हैं वो। ये विद्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसका प्रयोग तो वो नहीं करेंगे लेकिन उसका ज्ञान पूरी तरह से केवल ज्ञानी को होता है। समस्त विद्याओं का मालिक होने पर भी, स्वामित्व होने पर भी उसका उपयोग नहीं करते। नख केश नहीं बढ़ना, नख नाखून भगवान के बढ़ते नहीं, केवल ज्ञान के बाद। मुनि अवस्था में बढ़ सकते हैं लेकिन केवल ज्ञान के पश्चात नाखून नहीं बढ़ते और केश नहीं बढ़ते, और दाढ़ी मूंछ तो होती नहीं। बाल्य से, शुरू से ही, बाल्यावस्था से ही दाढ़ी मूंछ नहीं है उनको। तो ये केश सिर के बढ़ते नहीं, मुनि अवस्था में केश बढ़ते हैं, केश लोंच होता है, किंतु केवल ज्ञान के पश्चात केश लोंच वगैरह नहीं होता, क्योंकि वो बढ़ते ही नहीं और उसमें जीवोत्पत्ति भी नहीं होती, इसलिए केवली भगवान केश लोंच भी नहीं करते। जैसे बाल हैं वैसे ही दिखते हैं, और बाल के होने से भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बाल नहीं होने से अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ, घुंघराले हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सुंदरता, पुण्य प्रकृति, बैठे बैठे क्या काम करेगा वो पुण्य कर्म, तो भगवान को और सुंदर बना देता है। तो बाल भी इस प्रकार से बैठ जाते हैं जैसे नाग बैठ जाता है कुंडली मारकर अच्छी तरह से यूं, क्योंकि आज पंचमी है, आकर के मेरी पूजा कोई करेगा। सुंदरता से बैठता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठता वो। ऐसे बाल भी उनके पुण्य कर्म के उदय में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, गोल होकर के बैठ जाते हैं कुंडली मारकर। ये पुण्य का फल है, और उन बालों से भगवान इतने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, उनको देखते ही बैठ जाए ऐसा लगते हैं। मुनि अवस्था में केश लोंच करने से सुंदर लगते हैं, और केवल ज्ञान होने पर केशों के कारण उनका चेहरा सुंदर लगता है। कौन सा? नौवा, नेत्रों की पलकों के नहीं झपकना। देखो देखो, केवल ज्ञान होने के बाद ऐसा होता ही नहीं है। पलक झपने का तो उनका तो वैकरिक शरीर है, उनका हो या ना हो सब महत्व नहीं, पर हम लोगों का वही औदारिक शरीर है ना, ये तो बार बार होता है। किसी भी मनुष्य का ऐसा ऐसा नहीं होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो इसलिए अतिशय है ये। ये अतिशय क्यों है? सामान्य मनुष्यों में जो गुण नहीं होता वो दिखाई देता यहाँ, इसलिए अतिशय। कि इस लोंच का कोई नियम नहीं रहता, जब ध्यान में बैठते हैं साल भर भी बैठ जाएं तो केश लोंच करने का कोई नियम नहीं बनता। ध्यान की शरण में चले जाएं तो आपको कोई षड आवश्यक क्रिया नहीं है। हाँ, तब केश लोंच किया उन्होंने आहार के बाद तो केश लोंच किया ही उन्होंने। ध्यान अवस्था के उपरांत केश लोंच अवश्य करते हैं तीर्थंकर भगवान भी, केश बढ़ने पर ऐसा ही रखा, ऐसा नहीं है, केश लोंच भी किया होगा। मुनि दीक्षा लेते समय तो एक बार केश लोंच होता ही है, 6 महीने में और बढ़ गए, तो बड़े हुए बालों के साथ ही केवल ज्ञान हुआ ऐसा भी नहीं है। मुनि अवस्था में बाल बड़े थे इसका प्रतीक मूर्तियों में दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन 6 महीने तक आहार के लिए जब उठे हैं तो इतने बाल बड़े हुए ऐसे ही रखेंगे क्या वो? नहीं, अवश्य केश लोंच किया होगा। हाँ, इसलिए तो 4 महीने के अधिक किसके लिए उपदेश है? ये सामान्य मुनियों के लिए। और सामान्य मुनि भी यदि 6 महीने तक ध्यान करने की शक्ति रखते हैं तो उनको भी कोई नियम नहीं है। 4 महीने के अंदर नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, ऐसी नासिका दृष्टि रहती है हमेशा, ऐसा ऊपर सामने नहीं देखते भगवान कभी। हाँ, स्थिर हो जाती है दृष्टि, ये पलकें स्थिर हो जाती केवल ज्ञान के बाद, हिलेंगे नहीं, जैसे मूर्ति की पलके हैं वैसे। नेत्रों की पलके नहीं झपकना, शरीर की परछाई नहीं पड़ना। परम औदारिक शरीर है, इतना प्रकाशमान है कि बाहरी प्रकाश से उनकी छाया पड़ नहीं सकती। ये भी प्रकाशमान है और वो भी प्रकाशमान है, 2 ट्यूबलाइट लगाएंगे आसपास में, किस ट्यूब की छाया पड़ेगी? किसी की नहीं पड़ेगी। एक बुझाते हैं और एक जलाते हैं, किसकी छाया पड़ेगी? जो बुझ गई उसकी छाया पड़ेगी। तो भगवान की छाया क्यों नहीं पड़ती? तो उनका शरीर इतना दिव्य तेजोमय होता है कि उनका प्रकाश, उनकी छाया नहीं पड़ सकती। ये 10 अतिशय केवल ज्ञान के हो गई। देवकृत 14 अतिशय देखेंगे। जिनवानी, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम श्यांद रहे।